ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकां वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपां सागरजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवां साद्वैतां सावधूतां परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवां श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस पावन अवसर पर। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था तो स्वाभाविक रूप से पूरे भारतवर्ष में लोग इस उत्सव को बड़े ही जोर शोर से मनाते हैं और हम भी पूरे विश्व में इस्कॉन के जो डिवोटीज हैं वो इस उत्सव को मनाते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक चीज कभी भूलनी नहीं चाहिए, जब हम जन्माष्टमी का ये उत्सव मनाते हैं तो हमें सदैव एक महान वैष्णव का ऋणी होना चाहिए कि जिनके कारण हम सब इस उत्सव में भाग ले पा रहे हैं, या जिनके कारण ये जो जन्माष्टमी उत्सव है पूरे विश्व में जो लोग हैं मना रहे हैं और कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो कौन है आचार्य? श्रील प्रभुपाद। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद अपनी वरिष्ठ आयु में, लगभग उनकी आयु 70 साल की थी, उस समय ब्रज भूमि का त्याग करते हैं। ब्रज भूमि मतलब क्या है? वृंदावन। तो मतलब शास्त्र कहते हैं कि अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए इष्ट को ही त्याग देना ये एक सर्वोच्च प्रेम का लक्षण है। जैसे श्रील प्रभुपाद का जो सर्वोच्च प्रेम है वो वृंदावन के लिए है, ब्रज भूमि के लिए है, कृष्ण के लिए है, उनकी जो लीला स्थलियां हैं, ऐसे वृंदावन को अपनी अंतिम जो आयु है उस स्थान को कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन ऐसे श्रील प्रभुपाद केवल उस स्थान को त्यागते हैं, एक प्रकार से छोड़ते हैं, एक प्रकार से उनके हृदय में बहुत प्रगाढ़ विरह की भावना जागृत हो गए थे वृंदावन के प्रति। लेकिन फिर भी उस वृंदावन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो वृंदावन का त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनका ये आदेश था। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद वृंदावन से बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन ऐसे वृंदावन को ही वो त्यागते हैं वृंदावन की सर्वोच्च सेवा करने के लिए। तो वृंदावन की सर्वोच्च सेवा क्या है? कृष्ण भावना का प्रचार करना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक एक चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि ब्रजवासी जना प्रचारक धना, जो ब्रजवासी हैं उनका असली धन क्या है? प्रचार। केवल ब्रजवासी ही कृष्ण भावना का प्रचार कर सकता है, क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण है और उसके पास वो सामर्थ्य है, शक्ति है, योग्यता है कि वो किसी को भी वो कृष्ण प्रदान कर सकता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ब्रज भूमि में निवास कर रहे थे और वो ब्रजवासी से अभिन्न है, ऐसे प्रभुपाद ने वृंदावन को, वृंदावन की महिमा को, कृष्ण को, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम को अपने हृदय में धारण किया और वो ले चले हम उस धाम को पूरे विश्व में और वहां जाकर वृंदावन की पुनः स्थापना की। मतलब ऐसे लोगों को कृष्ण दिया जो जो लोग योग्यता धारण नहीं करते थे, ऐसे लोग जो मनुष्य नहीं कहलाते, जिनके पास मनुष्य कहलाने की योग्यता नहीं है, उन लोगों को भी श्रील प्रभुपाद ने ये सर्वोच्च कृष्ण भावना प्रदान की। बल्कि जो प्राप्त करना ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम सबाकार जाचे पतित पावन, वो कहते हैं कि ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ प्रेम सारे जीवों को प्रदान किया चैतन्य महाप्रभु ने, और वो प्रेम कोई सर्वसाधारण नहीं है। जितने भी भगवत अवतार आते हैं वो केवल आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च जो ब्रज का प्रेम है वो प्रदान नहीं कर सकते। बाकी अवतार आपको वैकुंठ तक ले जा सकते हैं, लेकिन वृंदावन ले जाने की ले जाने का सामर्थ्य किसी और अवतार में नहीं है, केवल चैतन्य देव और स्वयं साक्षात कृष्ण या उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनके पास वो योग्यता और सामर्थ्य है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद वो कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं जिसके लिए देवी देवतागण प्राप्त करने के लिए भी लालायित रहते हैं, और वही चीज ब्रज प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु देने आए उन्होंने वो प्रेम सारे जगत को प्रदान किया। तो ऐसे प्रभुपाद हमारे नित्य स्मरणीय होने चाहिए, चाहे हम सुबह उठ रहे हैं अपने बेड से सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, चाहे हम सोने जा रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन का अस्तित्व कुछ है तो वो श्रील प्रभुपाद की देन है। वो नहीं होते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन या हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व शून्यवत है। इसलिए प्रभुपाद के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है वो हमारे हृदय में सर्वोच्च होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के लिए एक विशेष प्रकार का लगाव, विशेष प्रकार की आसक्ति, विशेष प्रकार की जो भावना है वो हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद को कदापि नहीं भूला जा सकता, जिनकी ये सर्वोच्च देन है ये जो जन्माष्टमी फेस्टिवल है। तो ऐसे जो कृष्ण है उनको केवल 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 जाना जा सकता है कि उनके भक्तों के माध्यम से। आरत उपाय नाय गोपीनाथ, और कोई उपाय मुझे नजर नहीं आ रहा है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, धामों का भ्रमण कर करके, अपनी अटकलबाजी अपनी युक्ति के द्वारा कृष्ण को समझने का प्रयास कर सकता हूँ या प्रयास करता हूँ, वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के माध्यम से कृष्ण को यथावत समझने की इच्छा अपने हृदय में धारण नहीं करता, वो कृष्ण को लेश मात्र भी समझ नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद के माध्यम से कृष्ण को समझना हमारे लिए बहुत सरल है। अब पहले भी जन्माष्टमी हमने अपने जीवन में मनाई है, जब हम इस्कॉन के संपर्क में नहीं थे, कब जन्माष्टमी आती थी और कब चली जाती थी हमें कुछ भी पता नहीं होता था, और हम सोचते थे कि हाँ कोई कृष्ण मंदिर होना चाहिए जहां जाकर रात के 12 बजे कृष्ण का दर्शन नहीं अपना दर्शन देने के लिए जाता हूँ। यहाँ तक कि हमारी जन्माष्टमी सीमित है, तो लोग कई बार मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके मंदिर में बहुत रेगुलर डिवोटी है, रेगुलर कस्टमर होते हैं ना शॉप में, तो कहते रेगुलर डिवोटी है। कैसे रेगुलर है? कि हम हर जन्माष्टमी में आपके मंदिर में आते हैं, ये उनकी रेगुलरिटी है। तो इस प्रकार से ये जन्माष्टमी उत्सव नहीं है, वास्तव में वो व्यक्ति सोचता है कि बस अभी एक साल का मेरा कोटा खत्म हो गया, जन्माष्टमी गया, जन्माष्टमी गया, दर्शन किया, बस अभी एक साल के लिए कि कृष्ण नाम की जो चीज है ना उनसे मैं मुक्त हो गया हूँ, हाँ इनसे हटके अपना लाइफ हाँ मैं जी सकता हूँ। तो लेकिन वास्तव में कृष्णा कृष्ण की लीला उनको जानना केवल तभी संभव है जब हमारे ऊपर भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनकी अहित की कृपा होगी, तभी वास्तव में हम कृष्ण को समझ सकते हैं। तो लेकिन कृष्ण की एक खासियत है, हाँ कृष्ण के कई सारे गुण हैं, जैसे जैसे हम कृष्ण को जानते हैं वैसे वैसे कृष्ण के गुण हमारे हृदय में प्रकट होने लगते हैं। कृष्ण को देखने की हमारी जो दृष्टि है, हमारी भावना है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और उसकी शुरुआत वास्तव में कृष्ण के नाम से है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने ग्रंथ में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो भगवत नाम है कोई व्यक्ति गंभीरता से उसका उच्चारण करता है शरणागति की भावना से, तो उस व्यक्ति को भगवत रूप स्वाभाविक रूप से स्मरण होने लगता है, और जैसे भगवत रूप उसको स्वाभाविक रूप से स्मरण होता है फिर उसे भगवान के जो गुण है उसके हृदय में निकलने लगते हैं, अलग अलग गुणों को वो देखने लगता है, भगवान के गुणों को अप्रिशिएट करता है, उनकी प्रशंसा करता है। तो एक क्वालिटी क्या है कृष्ण की, कृष्ण उपदेश बहुत बड़े बड़े देते हैं, भगवत गीता में इतना सुंदर प्रवचन दिया, कोई दूसरी गीता भी सुनाई भागवत के अंत में उद्धव जी को, जो भगवत गीता का एडवांस वर्जन है, हाँ उद्धव को भी भगवत गीता सुनाए। लेकिन एक चीज क्या है, वो उपदेश बड़े बड़े देते हैं लेकिन अपने बारे में बोलते नहीं है, मैंने क्या क्या किया। हमारी स्थिति क्या है, सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बोलता हूं कि मैंने ये लीलाएं की है, मेरे ये कार्यकलाप है, मैंने ये चीजें अचीव की हैं। तो लेकिन कृष्ण को देखा जाए, कृष्ण उपदेश प्रदान करते हैं लेकिन अपने बारे में कभी नहीं बोलते अपने मुंह से कि देखो मैं कितना, हाँ वो कॉलर उठा के नहीं बोलते देखो कि मैं कितना बड़ा हूं कि मैंने इतने असुरों का वध किया बहुत सरलता से, ऐसा कभी भी नहीं है। वैसे मैं कल सोच रहा था कि कृष्ण ने कई चीजें अपने लेफ्ट हैंड से की हैं, हाँ तो मैं सोच रहा था क्या कृष्ण क्या क्या कह सकते हैं, लेफ्टी। तो कृष्ण ने गोवर्धन भी उठाया लेफ्ट हैंड से, कल मैं वत्सासुर के बारे में पढ़ रहा था तो उसको भी वत्सासुर का हाँ वो चराने के लिए बछड़ा आया था, वो पीछे जाकर क्या किया उन्होंने, लेफ्ट हैंड से उसका पाव पकड़ा और घुमाया, और भी वो केशी असुर के मुंह में भी अपना एक प्रकार से लेफ्ट हैंड डाला। तो कई जगह ब्रज में भगवान ने अपने इस हाथ का इस्तेमाल किया है असुरों को क्या करने के लिए, दंडित करने के लिए। तो ऐसे कृष्ण बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है, वो कभी अपने बारे में बोलते नहीं है और इवन यशोदा को भी नहीं बताते। बच्चा कुछ घर में आता है स्कूल से तो सारे अपने जो भी कार्यकलाप या अपनी लीला है माता को जाके पहले बोल देता है, लेकिन यहाँ कृष्ण ब्रज वन में बछड़ों को चराकर आते थे कभी अपने बारे में नहीं बोलते थे। और लेकिन भगवान बोलते नहीं है लेकिन उनके बारे में कौन सबसे अधिक बोलता है, उनके भक्त बोलते हैं, उनके भक्तों के हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम होता है कि वो बोले बिना रह नहीं सकते, उनके लिए स्वाभाविक है। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज को कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आपको आपका कुछ ऑपरेशन करना है तो आपको बोलना बंद करना होगा कुछ वीक के लिए, भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मैं मर जाऊं लेकिन कृष्ण के बारे में बोलना नहीं त्याग सकता, कृष्ण कथा इज लाइफ, कृष्ण कथा मेरा जीवन है, कृष्ण कथा के बिना मैं कैसे जी सकता हूँ। तो सर्वाधिक कृष्ण कथा की थी शुकदेव गोस्वामी ने, शुकदेव गोस्वामी ने कृष्ण का सबसे अधिक वर्णन किया श्रीमद् भागवतम के द्वारा, और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है उसको इन भक्तों ने ढूंढ ढूंढ के निकाला, मानो ये जो आचार्य गण है इनको कोई सोने की खान मिल गई हो, और सोने की खान को जितना क्या कहते हैं, राइट वर्ड क्या है, पूरे नहीं, खुदाई करते हैं, खोदते हैं, तो वो और ना गोल्ड मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है। तो वैसे ही कृष्ण की लीलाएं हैं। कृष्ण की लीलाएं ऐसी है कि अलग अलग आचार्य अपने दिव्य प्रेम की जो भावना उनके हृदय में कृष्ण के लिए है, उस लीला को देखते हैं, अनुभव करते हैं, और उसमें से अद्भुत गोल की तरह जो रत्न है वो निकालते हैं। और वास्तव में इन आचार्यों के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को अनंत कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं योगा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमेशन सत्वबाल बुद्धि, कि भगवान तो अनंत है, अनंत को समझना बहुत कठिन है। आचार्यगण कहते कि अनंत का मतलब क्या है, जैसे कृष्ण की गव्वे या बछड़े अनंत हुआ करते थे वहां ब्रज के वनों में। अनंत का मतलब है कि एक के ऊपर 12 या 22 जीरो ऐड करोगे तो वो संख्या क्या है, अनंत है, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो ऐसे भगवान जो अनंत हैं, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं और उनका धाम भी अनंत है। तो हमारे जैसे सूक्ष्म बुद्धि वाले जीव, हमारा साइज कितना है, बालाग्रह शत भागश शतधा कल्पितश, बाल के आग्रह भाग का 10,000वां हिस्सा हमारा साइज है, और भगवान क्या है, विभु है, और हम अनु है। कैसे उनको समझा जा सकता है, केवल उनके भक्त या भगवान की कृपा से ही जो भगवान विभु है उनको हम समझ सकते हैं। तो ऐसे भौतिक जगत में भगवान अवतरित होते हैं, और यदि वो रियली अपना अनंत रूप प्रकट करे तो हमारे लिए समझना बड़ा असंभव है। गीता के उफा के अंत में अर्जुन ने कहा मैं तो आपका विष्णु रूप देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, देखो देखो, लेकिन पहले दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ददामि दिव्यं ते चक्षु, मैं ऐसे चक्षु दे रहा हूँ दिव्य, जैसे 3D मूवी देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है, तो वैसे ही अर्जुन ने भी क्या किया, चक्षु धारण किए गए और देखा तो क्या विशाल अनंत रूप देखा। वो कहते प्लीज बंद करो, जल्दी बंद करो, बहुत हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने ओरिजिनल द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में प्रकट हो जाइए। तो भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में प्रकट होते हैं, और फिर अर्जुन वास्तव में उनका गुणगान करने लगता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए भगवान मनुष्य रूप में अपनी लीलाएं करते हैं, तो तब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, हम समझ पाते हैं, क्योंकि वो कार्यकलाप हमसे संबंधित है। तो इस प्रकार से भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको हम इजीली समझ सकते हैं केवल उनकी कृपा से या उनके भक्तों की कृपा से। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि भगवान साधारण लीलाएं करते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। भागवतम में दशम स्कंद में 13वां अध्याय यही है, ब्रह्म विमोहन लीला। क्या है, ब्रह्म विमोहन लीला। इतना बड़ा ब्रह्मा जिसके चार चार सर हैं, चार चार दिमाग काम कर रहे हैं एक साथ, वो भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाए, वो भी मोहित हो गए। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने उस चैप्टर का टाइटल ही लिया ब्रह्म विमोहन लीला। और ब्रह्मा कब विमोहित हुए, जब ब्रह्मा ऊपर से देख रहे थे कि ये गौर बाल अभी तो एक पूतना को मारा, फिर किसे मारा उन्होंने, उनका जो भाई है बकासुर को, फिर आघासुर को, इतना मारने के बाद भी, लेकिन एक चीज क्या कि वो विष पिनाक पिलाने आए थे उसको अपनी माँ बना लिया। ठीक है, आप मुझे मारने आए हो, चलो आज से आप मेरी माँ। हाँ, फिर वो बकासुर और आघासुर, हाँ ये फैमिली मेंबर, सबके फैमिली का एक ही बिजनेस है। क्या बिजनेस है, किले कृष्णा, कृष्ण को कैसे मारना, ये फैमिली बिजनेस है। तो भगवान ने उनको भी अपना धाम प्रदान किया, पहले तो पुतना को माँ बना दिया, तो एक सर ब्रह्मा का दर्द होने लगा, मेरा भी कल शाम को सर दर्द हो रहा था, तो तो मैं पढ़ रहा था पूतना के बारे में, तो फिर ब्रह्मा का दूसरा सर दर्द होने लगा जब बकासुर का वध हुआ, उसको भी मुक्ति दे दी। फिर तीसरा सर दर्द होने लगा जब क्या हुआ, अघासुर को मारा। अघ का मतलब है पाप, इसलिए गीता में कृष्ण कहते ना, हे अर्जुन तुम अनघ हो, हाँ पाप से रहित हो, निष्पाप हो। तो फिर चौथा सर दर्द होने लगा कब, जब ये बाल कृष्ण अपने सखाओं के संग में यमुना के तट पर बैठकर एक सर्व साधारण बालक के भांति उनके उनके साथ खा रहे हैं, उनका उचिष्ट खा रहे हैं, और जब उन्होंने देखा कि गव्य आदि नहीं मिल रही है तो कृष्ण उड़ जाते हैं, अपने हाथ में चपाती लेते हैं, मोटे जो भी है चपाती हो गई या जो होगा, और फिर उंगलियों में कई प्रकार के आचार और स्वीट्स लेकर खाते वाते घूमते हैं गवों को ढूंढने के लिए। ब्रह्मा ने कहा ये कैसा भगवान है, ये तो उचित खाते जा रहा है, हाँ आचार इधर लगाते हुए और कई सारी चीजें एक हाथ में दूसरे हाथ में घूम रहा है, तो चौथा सर चौथा वाक्य था ना वो दर्द होने लगा, इसलिए पूरी तरह से मोहित हो गए और वो भगवान को समझ नहीं पाए। इसलिए भागवतम की शुरुआत में ही शुकदेव गोस्वामी या व्यास देव लिखते हैं मोहयन्ति यत् सूरयः, जो देवतागण भी है वो मोहित हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है एक भक्त के लिए कृष्ण को सही सही रूप से समझना। और प्रभुपाद ने कृष्ण को इतना अमेजिंगली और इतना सरलता से प्रस्तुत किया है, कोई सिंसियर डिवोटी यदि प्रभुपाद ने जो समझाया है उनके ग्रंथों के माध्यम से उनको नियमित अध्ययन करता है और प्रभुपाद की कृपा से वो सरलता से समझ सकता है कृष्ण को। इसलिए एक बार श्रील प्रभुपाद 1977 में वृंदावन में अपने अंतिम समय में बेड में लेटे हुए थे, शरीर त्यागने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, बुलाकर कहा कि जब प्रभुपाद इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, का आप सबको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तभी प्रभुपाद के सामने झूठ तो नहीं बोल सकते, अभी हमें कोई डिवोटी बोलता है मुझे माला करते हो तो मुझे रोज करता हूँ, लेकिन कोई सीनियर या कोई गुरु पूछे तो हम डरते हैं, तो छोटा मोटा भक्त पूछता है तो हम जो मर्जी उत्तर देते हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद ने सारे शिष्यों को पूछा कि आप बताओ क्या आप सबको पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण ही परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो शिष्यों को लगा प्रभुपाद के साथ झूठ कैसे बोला जाए, चुप हो गए। प्रभुपाद ने कहा तो ये सोचने लगे कि हम दिखावा नहीं कर सकते। तो वास्तव में ये वो प्रश्न केवल उनके शिष्यों के लिए नहीं था, वो प्रश्न हम सबके लिए भी है। अब कृष्ण भावना में लगे हैं कि हमें ये पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो कृष्ण है वो परम भगवान है, मुझे केवल 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 उनके प्रति समर्पित होना है, केवल उनकी सेवा करना है, वही मेरे आराध्य देव हैं। क्या ये हमारे अंदर पूर्ण विश्वास है? यदि हम अपने आप को परखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में इस विश्वास से हम कई अधिक दूर हैं। तो इसलिए केवल भक्तों की कृपा से कृष्ण को समझना और ये दृढ़ विश्वास जागृत करना संभव है। भक्तों के संग में नियमित कृष्ण कथा का श्रवण करने से और हरि नाम का उच्चारण करने से वो व्यक्ति भगवत भक्ति में भगवत भजन में दृढ़ हो जाता है। इसलिए आज का जो दिन है उसको ग्लोरीफाई करने के लिए श्री संप्रदाय के महान आचार्य राजा कुलशेखर, उन्होंने बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है। तो राजा कुलशेखर ने कृष्ण की और कृष्ण का गुणगान किया है आज के दिन को लेकर। तो प्रभुपाद ने एक बुक ट्रांसलेट की थी जिसका नाम है मुकुंदमाला स्तोत्र। तो प्रभुपाद ने कुछ श्लोक ट्रांसलेट किए थे, बाद में उनको समय नहीं मिला, आधा बुक उनके शिष्य सत्स्वरूप दास गोस्वामी ने ट्रांसलेट किया संस्कृत से। तो ये जो ग्रंथ है मुकुंदमाला स्तोत्र ये बहुत अमेजिंग है, मुकुंद कृष्ण के गुणगान से भरा पड़ा और शिक्षाओं से भरा पड़ा ये ग्रंथ है, जहां कुलशेखर कहते हैं इस श्लोक में, तब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, हमारे पास समय का अभाव है, जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयाम,
जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयाम,
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः,
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः,
जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो,
जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो,
जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंदः, जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयाम, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः,
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः,
जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो,
जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो,
जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंदः,
जयतु जयतु पृथ्वी भारनाश मुकुंदः।
इसका अनुवाद इस प्रकार से है, श्रीमती देवकी देवी के पुत्र के रूप में विख्यात पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, वृष्णि वंश के उज्ज्वल प्रकाश भगवान कृष्ण की जय हो, उन भगवान की जय हो जिनके कोमल शरीर का रंग नवीन बादल के श्यामल वर्ण जैसा है, उन भगवान मुकुंद की जय हो जो पृथ्वी के भार को हटाने वाले हैं। हम इस प्रकार से स्तुति करते हैं इस अद्भुत श्लोक के माध्यम से आज के दिन का स्मरण करते हुए, तो विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में भी हम देखते हैं गोपियां जब कृष्ण से विरह का अनुभव करती हैं तो वो भी कहती हैं जयति ते वितं जन्मना व्रजः, कहते हैं कि आपकी जय हो, आपका जन्म तो ब्रज में हुआ है। गोपी गीत का पहले श्लोक में गोपियां कृष्ण का जयगान करती हैं और यहाँ हर स्थान में राजा कुलशेखर कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, जयति जयति जयतु जयतु, इस प्रकार से कृष्ण की महिमा या कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं इतने सुंदर श्लोक में। तो हम भी वास्तव में हर रोज जब ये जय ध्वनि देते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस, है ना, यदि हम जय का उच्चारण नहीं करते, केवल कहते ओम विष्णुपाद, या फिर गिरिराज महाराज एक बार इस जय ध्वनि या प्रेम ध्वनि के बारे में बोल रहे थे कि कई बार भक्त मंगल आरती में आ जाते, दौड़ते हुए आते हैं, शाम से पहले पहुंचना है, बेचारे लेट सोए होते हैं, जल्दी उठे हुए होते हैं, मंगल आरती में तो स्ट्रगल करते खड़ा रहने का, कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि भक्त खड़े खड़े मंगल आरती में नींद आने लगती है, वो बेचारा स्ट्रगल करता है कैसे खड़ा रहा जाए, और वो वेट करता है कि कब ये प्रेम ध्वनि आएगी मेरे जीवन में, जय ध्वनि कब ये होगा, जय ओम विष्णुपाद, क्योंकि वो जो स्लॉट है वो सोने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि उसमें तो दंडवत प्रणाम करना होता है। कुछ भक्त होते हैं तो प्रेम ध्वनि तो पूरा लंबा 10 मिनट तो प्रेम ध्वनि बोलते रहते हैं, इसकी जय उसकी जय जिसकी जिसकी भी नहीं सबकी जय करते रहते हैं। तो फिर जो भक्त इस प्रकार से होता है वो तो पूरा सोते रहता है प्रेम ध्वनि के समय में। तो गिरिराज महाराज कहते हैं कि ये तो उस भक्त के लिए उचित नहीं है, हम तो थोड़ी सी नींद के लिए प्रेम ध्वनि में भाग लेते हैं और कभी भी जय नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते?
जय,
जय नहीं बोलते। तो वो कहते हैं कि जब हम ये जय नहीं बोलते कृष्ण का, उनके भक्तों का, और अपने जीवा को दांत में दबा के रखते हैं, मुंह को बंद रखते हैं, इसका अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ यह है कि मैं अपना जय जयकार करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? अपना जय जयकार करना चाहता हूं, कृष्ण का नहीं, वैष्णवों का नहीं। ये वास्तव में राक्षस रूपी अनर्थ है। तो जब हम कृष्ण का कृष्ण की जय करते हैं तो जितने भी इन आसुरों को मारा है भगवान ने, वो सारे आसुर हमारे हृदय में है, तो कृष्ण की जय करने मात्र से ही ये आसुर हमारे हृदय से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। काम क्रोध ये जो छह रिपु हैं, छह प्रकार के जो आसुर हैं, तो इस प्रकार से कुलशेखर को कहते हैं जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम। तो सबसे पहले किसको थैंक यू कर रहे हैं, किसको वो धन्यवाद कर रहे हैं? एक प्रकार से देवकी को। वास्तव में कृष्ण ये देवकी वसुदेव नंद और यशोदा तपस्या नहीं करते ना तो कृष्ण आने वाले नहीं थे। कृष्ण थोड़े आसुरों को मारने के लिए आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। कृष्ण का इंटरेस्ट किसमें है? केवल ये नंद यशोदा देवकी वसुदेव के लिए वो आ रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि ये यशोदा नंद या देवकी या वसुदेव का धन्यवाद मैं कर रहा हूं या उनकी जय हो, क्योंकि उनकी तपस्या के कारण भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं ग्रहण करते, वो अजन्मा है। अजन्मा को जन्म कैसे हो सकता है? इसलिए वो अगले लाइन में कहते हैं जयतु जयतु कृष्ण वृष्णि वंशः प्रदीपा। कि ऐसे नहीं है कि भगवान किसी खानदान में उन्होंने जन्म लिया, ऐसे नहीं है, बल्कि वो जो वृष्णि वंश है वो उज्ज्वल हो गया या उसकी ग्लोरी बढ़ गई जब भगवान वहां एक प्रकार से अवतरित हो गए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आपके जो कृष्ण है ना उनके हम वंशज हैं। जब हम पूछते कि कहां क्या है आप कौन हो, कहते हम भी यादव है। कई होते ना यादव बहुत सारे हैं, तो पूछा जाए कि यादव जी आप कहां क्या करते क्या हो, तो कहते हाँ जो लेदर की फैक्ट्री है ना उसमें काम करता हूं। हाँ, तो इस प्रकार के यादव हैं। तो भगवान किसी वंश से नाता रखते नहीं है, भगवान वंश आदि से परे हैं। कोई कह सकता है कि भगवान राम सूर्य वंश में आए, कृष्ण चंद्र वंश में आए, तो देखा जाए कृष्ण ये जो सूर्य है और चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति के स्थान कौन है, सूर्य और चंद्रमा का बाप कौन है, यदि देखा जाए कौन है, कृष्ण है। तो कैसे संभव है कि कृष्ण उनके जो ये कुल है उसमें उदित होते हैं, वो असंभव है एक प्रकार से। तो ऐसे कृष्ण आते भी है तो राजा कुलशेखर कहते हैं जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमल अंगो, भगवान के सौंदर्य का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे है कृष्ण जो नए घने बादल के समान है और जिनका जो शरीर है वो बहुत अधिक कोमल है, जैसे कि जो कमल है उसकी नई नई पंखुड़ी उदित होती है उसके समान कृष्ण है। और ऐसे कोई पूछ सकता कि इतने कोमल है तो क्या कर सकते हैं? तो अगली लाइन में वो कहते हैं कि भार नाशो मुकुंदा, पृथ्वी का भार उन्होंने नाश किया। कोमल हो सकते हैं लेकिन पावरफुल है, जैसे हम नरसिंह प्रेयर में गाते हैं, क्या गाते हैं, तब कर कमल वरे नखा मद्भुत श्रृंगा दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगा। तब कर कमल वरे, उनके हाथ कैसे हैं, कमल के समान है। और वहां वो क्या कहते हैं, शिल टंखा नखाले, और वो जो भ्रमर आदि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है फिर भी उसको विदीर्ण किया, किसने विदीर्ण किया, कमल ने। तो ये विरोधाभास है। तो भगवान में सारे विरोधाभास भी एक साथ निवास करते हैं। तो ऐसे भगवान जिनका जन्म कर्मच में दिव्यम है और जिसको समझने के लिए हमें आचार्यों के कृपा की आवश्यकता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, बल्कि हम श्रीमद् भागवतम से सुनते हैं, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए हैं। तो हमारे गौड़िया संप्रदाय के दो प्रमुख आचार्य हैं, एक है श्रीपाद जीव गोस्वामी और एक है कवि कर्णपुर, जिन्होंने अद्भुत ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि कृष्ण केवल मथुरा में ही प्रकट हुए हैं, कृष्ण साथ साथ कहां प्रकट हुए थे, वृंदावन में भी यशोदा नंदन के रूप में प्रकट हुए थे। तो ऐसे कृष्ण का जो प्राकट्य जो गोकुल महावन में हुआ था यशोदा नंदन के रूप में, जिसका वर्णन करते हैं कवि कर्णपुर। इतना अद्भुत वर्णन है, शास्त्र कहते हैं कि यदि व्यक्ति कोई कृष्ण के प्राकट्य का वृंदावन में नंद महाराज या यशोदा नंदन के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, इसका केवल श्रवण करता है, मनन करता है, स्मरण करता है, तो निश्चित रूप से उसका उद्धार हो सकता है और उस व्यक्ति के हृदय में सारी जो आसक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो सकती हैं। और कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस प्राकट्य को बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है, विशेष रूप से जो कवि कर्णपुर ने वर्णन किया है, तो वो व्यक्ति का जो आकर्षण है वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना रहेगा। और इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उस व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। तो इस प्रकार से कवि कर्णपुर कहते हैं कि कृष्ण का जो प्राकट्य का वर्णन वो ग्रंथ में लिखते हैं, जो बहुत ही अनोखा और दिलचस्प है, सुंदर वर्णन है। थोड़े समय के लिए हम प्रयास करते हैं सुनने का। तो जब ये वर्णन शुरू करते हैं और वो बहुत कठिन है समझने के लिए, कवि कर्णपुर कृष्ण के प्राकट्य को समझना समझाने के लिए कई प्रकार का जो दृष्टांत है उसका इस्तेमाल करते हैं। उन दृष्टांत को समझना आजकल के जीवों के लिए बड़ा कठिन है, उनको समझने के लिए भी उनको और कई सारे भक्तों की आवश्यकता है। तो वो कवि कर्णपुर कहते हैं कि कृष्ण इस जगत में प्रकट होने के या गोकुल में प्रकट होने के केवल दो कारण हैं। तो कोई पूछे कि हे कवि कर्णपुर, हाँ, तो आप बताए कि क्या कारण है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहला कारण है कि कृष्ण नंद महाराज और यशोदा माता को संतुष्ट करने के लिए इस जगत में अवतरित हुए हैं। हाँ, दूसरा और कोई कारण नहीं था। किसके लिए आए थे कृष्णा? केवल नंद महाराज और यशोदा माता को संतुष्ट करने के लिए, उनको दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। और दूसरा कारण वो कहते हैं कि कृष्ण श्रृंगार रस या माधुर्य रस या परकीय भाव श्रीमती राधिका के संग में आस्वादन करना चाह रहे थे, इसलिए भगवान कृष्ण इस जगत में अवतरित होते हैं। तो भगवान अवतरित होने से पहले वर्णन आता है कि गोकुल में नंद भवन के एक कक्ष में यशोदा माता का एक कक्ष था। अभी सारे लोग बहुत उत्साहित थे कि माता यशोदा एक बालक को जन्म देने वाली है। और वो ऐसे नहीं कि वसुदेव ने सोचा अभी यशोदा माता को हम मथुरा के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, मैटरनिटी होम, ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं। वहां ही उन्होंने नंद भवन में जो कक्ष था उसमें आज के दिन जो रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी का दिन कृष्ण पक्ष, यशोदा माता हाँ संध्या के समय में वहां निवास कर रहे थे। और वहां उस कक्ष में यशोदा माता का वर्णन कवि कर्णपुर कहते हैं कि यशोदा माता एक सरोवर के समान है। किसके समान है? तो अभी थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा, आपको थोड़ा सीधे बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। अभी कृष्ण के प्राकट्य को हम ये करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मैं जब ये पढ़ रहा था कृष्णा बुक में कल कुछ चीजें, कि जब मैं सोच रहा था कि जन्माष्टमी में मैं अपना स्थान कहाँ चूज करूँ, तो कहाँ हो सकता है, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए एक स्थान सही है। वो कौन सा है? अच्छा, क्योंकि हम जब कृष्ण कथा को सुनते हैं तो धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं और जो निद्रा देवी है वो हमारे सर के ऊपर मंडराने लगती है। फिर बेचारा जो प्रवक्ता है बीच बीच में हाथ ऊपर कराता है और बुलवाता है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो जब मैं सोच रहा था कि हरे कृष्ण मंत्र बहुत आवश्यक है हमारे लिए प्रवचन के बीच बीच में, यह हमें जगाता है, तो कृष्ण मुख में कल पढ़ते समय सोचा कि जन्माष्टमी इतने सालों से मनाई है, अपना वो स्थान निश्चित कर लेते हैं, कोई पर्टिकुलर प्लेस की बस वो फिक्स है। तो सोचा कि कहाँ रोल निभा सकता हूँ। सोचो जन्माष्टमी ड्रामा है तो मैं कहाँ रोल कर सकता हूँ उसमें। तो मैंने सोचा कि जब भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ और स्वाभाविक रूप से भगवत कृपा से सारे जो वसुदेव के हाथ पांव की जो श्रृंखलाएं हैं वो खुल गई और सारे दरवाजे कारागृह के खुल गए और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सो गए और फिर कृष्ण चले गए। तो मैंने कहा मेरे लिए स्थान वो सिक्योरिटी गार्ड का सही है, क्योंकि जन्माष्टमी आती है तो हमें इतने अधिक ये हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, कृष्ण कब आया और चले गए पता भी नहीं चलता। हाँ, कृष्ण ने कब कृष्ण का प्राकट्य हुआ, कब कृष्ण गोकुल चले भी गए वो सिक्योरिटी गार्ड्स को पता नहीं चला। तो मुझे लगा कि ये स्थान सही है। हाँ, फिर कृष्ण आप आओ और चले भी जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी दयनीय स्थिति है। तो यहाँ जब यशोदा माता एक कक्ष में थी जिसका वर्णन बहुत अमेजिंग दृष्टांत के साथ किया है, वो कहते कि यशोदा माता एक सरोवर के समान है, सरोवर के समान प्रतीत हो रही थी। और कैसा सरोवर, जो निर्मल जल का सरोवर, निष्कलंक निष्पाप, और मानो अमृत को भी पराजित करने वाला जल उसमें हो। और ऐसे सरोवर में आज के दिन एक नील कमल उत्पन्न हुआ। क्या हो गया, कौन सा कमल?
नील कमल।
यहाँ दिखाई दे रहे कृष्ण आपको कैसे है? तो कहते हैं कि इस जलाशय में यह नील कमल उस सरोवर से उत्पन्न हुआ, वो गाया। और वो नील कमल कौन था? श्याम सुंदर कृष्ण। बोलिए
श्याम सुंदर कृष्ण।
तो जैसे श्याम सुंदर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, यशोदा माता की तुलना जलाशय या सरोवर से की है, तो भगवान का वर्ण नील वर्ण के है, नील मणि कहा जाता है। कृष्ण को क्या कहा जाता है? नील मणि। तो ऐसे कृष्ण जब प्रकट हुए तो स्वाभाविक है अभी उस कक्ष में यशोदा माता के अलावा और कोई नहीं था। जितनी भी माताएं हैं वो कहां थी? कक्ष के। और वो अपने कान किसी को नींद नहीं आ रहे थे। हाँ, जैसे सोचो कल मंगल आरती जाना है, अब जन्माष्टमी है तो हम मंगल आरती जाने के लिए पूरे रात नींद नहीं आती। हमें पढ़ रहा था कि जब कृष्ण ने कहा नंद महाराज, नंद बाबा मुझे एक बात बोलनी है, कहते बेटा बोलो ना, बहुत बोलते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ना थोड़े नंद मोहन से बाहर थोड़े वत्स बछड़ों को चराने जाना चाहता हूँ। तो वो प्राइवेटली अपने पिता से बात कर रहे थे, उनको पता है, माता को बताऊंगा तो वो मानेगी नहीं। तो यशोदा माता पीछे का खड़े थे, उन्होंने कहा ये सब छोड़ दो, ये कोई बछड़े चराने वराने नहीं जाना है, घर में ही रहो। तो कृष्ण के पास एक युक्ति थी, वो हमेशा वो जैसे बच्चों के पास रोना इजी है, किसी को अपने वश में करना है, तो कृष्ण रोते नहीं थे। वो कहते थे तुम्हें याद है, हाँ, आज मैं बचा हूं, बच गया हूं ये नंद महाराज के कारण, तुमने मुझे कैद करके बांध के रखा था उखल के साथ, और मैं अपने आप को छोड़ने के लिए जब दो वृक्ष के बीच में से गुजरा तो वो दोनों वृक्ष गिर पड़े और मेरे ऊपर नहीं गिरे, नहीं तो मैं मर जाता, आज नहीं होता यहाँ गोकुल में। तो फिर ये भावुक हो जाती है यशोदा माता, क्या हो जाती है? भावुक, चुप हो जाती है। नंद महाराज कहते तुम्हारे पास जादू है, हाँ, यशोदा का, यशोदा को चुप करने की जादू है। तो कहते कि ठीक है, कल आपको बछड़ों के लिए चराने के लिए भेज देते हैं। तो ये चीज बछड़ों ने भी सुनी कि कृष्ण कल हमें अपने साथ ले जाने के लिए आने वाले हैं। तो वहां वर्णन आता है कि बछड़ों को पूरी रात नींद नहीं आई, वो इंतजार करते रहे। उन सबने सोचा कि कब कृष्ण आएंगे, क्योंकि बछड़े वैसे ही बड़े वृष शंकल होते हैं, वो हमेशा उठपटांग नाचते हैं कूदते हैं। अपने बछड़ों को देखा होगा तो आपको पता चलेगा। तो बछड़े इंतजार कर रहे थे कब कृष्ण आएंगे सुबह। और नंद महाराज सुबह कृष्ण को लेकर पहुंच गए तो हर बछड़ा जैसे मंगल आरती में हम तैयार हो जाते ना, बिल्कुल श्रृंगार तन मन धीर मार्जना दो, जितना श्रृंगार बाकी दिनों में नहीं करना है उतना मंगल आरती, और वो भी जन्माष्टमी की। कृष्ण का श्रृंगार का कुछ हमें लेना देना नहीं है, तो तैयार हो जाते हैं ये बछड़े भी बिल्कुल अपने पूछ ऊपर करके हर कोई कृष्ण के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है, मुझे ले लो प्लीज, मुझे आपके साथ ले लो। तो वहां कृष्ण को कुछ ही बछड़ों को चूज करना था। अभी पहला दिन है ना, इतने सारे बछड़ों को ले जाएंगे तो कैसे संभाल पाएंगे। तो कई बछड़े हैं बिल्कुल ठीक ठाक होकर कृष्ण के सामने खड़े थे कि अभी मुझे चूज करो, मुझे चूज करो। तो फिर भगवान ने कुछ बछड़ों को नंद महाराज ने चूज किया और फिर कुछ और उनको इतना गर्व हुआ कुछ बछड़ों को, उन्होंने कहा देखो हाँ मैं जा रहा हूँ कृष्ण के साथ। हाँ तो फिर बाकी बछड़ों को कृष्ण ने देखा, उनके ऊपर अपनी कृपा कटाक्ष डाला और उनको कहा कल आप सबको बचे हुए बछड़ों को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वहां वर्णन करते आचार्यगण कि जब बछड़ों को कृष्ण ले जा रहे थे तो बछड़े इतने कूद नहीं रहे थे जितने कृष्ण कूद रहे थे क्योंकि सबसे अधिक आनंद किसको हो रहा था, कृष्ण को हो रहा था। तो कृष्ण तो उसी प्रकार से ये जो सारी स्त्रियां हैं उस कक्ष के बाहर अभी बालक जन्म ग्रहण करेगा वो बड़ी उत्साहित थी, लालय थी कब बच्चे के रोने का आवाज सुनाई देगा, है कि नहीं। सर्वसाधारण बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो कृष्ण भी एक सर्वसाधारण बालक की भांति रोना चाहते हैं। तो लेकिन भगवान का ये जो रोना है ये साधारण नहीं है, एक विशेष व्यक्ति जब साधारण कार्य करता है वो भी बहुत ग्लोरियस होता है। जैसे कोई व्यक्ति सोचो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो जमाई ले ले क्लास के बीच में, आप अचानक आ गए पांच छह जमाई ले ले तो आप अपने मोबाइल में कैच करना चाहोगे क्या, अरे वो महान ग्रेट व्यक्ति ने इतनी जमाई ली हमारे साथ थे। या कोई व्यक्ति या किसी की हैंडराइटिंग हमारे पास आ जाती है बहुत बड़े व्यक्ति की, तो हम उसको रखना चाहते हैं। तो उस प्रकार से कृष्ण भी रोते हैं तो सर्वसाधारण रूप से नहीं, बल्कि कवि कर्णपुर कहते हैं कि कृष्ण रोते हैं तो महावाक्य निकलता है। उनका रोना क्या था, महावाक्य था। समझ में आया महावाक्य, नहीं ना, महामंत्र समझ में आया क्या है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो जैसे ये महामंत्र है, मतलब मंत्रों में जो महान है वो क्या है, महामंत्र है। वाक्यों में जो महान है वो क्या है, महावाक्य है, ओंकार। क्या है वो महावाक्य, ओंकार। तो कृष्ण रोए भी तो जैसे वेलकम करने के लिए या किसी चीज का ओपनिंग उद्घाटन करना होता है तो नारियल फोड़ा जाता है या फिर शंख बजाया जाता है, तो वैसे कृष्ण अपनी लीलाओं का उद्घाटन करने जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, महावाक्य एक प्रकार से निकाला अपने मुंह से और सारी गोपियां बाहर की कक्ष के उन सब ने सुना। सुनते ही कृष्ण का दर्शन करने के लिए वो जो गोपिकाएं हैं दौड़कर अंदर आए, दौड़कर अंदर आने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। दरवाजे की चौकट पर आई गोपिकाएं हैं वो स्त्रियां ब्रज, हाँ ब्रज की जो स्त्रियां हैं, अंदर यशोदा माता अकेले थे और वहां उस बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वो बालक एक प्रकार से रो रहा था और वो रोना रुदन क्या था, महावाक्य था, जिसको सुनकर गोपिकाएं वो चौकट के पास आई और वहां अंदर उनको जाया नहीं जा रहा था। एक ऐसी चीज जो उनको बाहर धकेल रहे थे और वो क्या थी, कस्तूरी का सुगंध। क्या था, कृष्ण के शरीर से निरंतर कस्तूरी का सुगंध उद्भासित है, निकलते रहता है। तो गोपियों को लगा कि मानो कस्तूरी के सुगंध का सुनामी आ गया है या कस्तूरी के सुगंध का तूफान आ गया है। वो दौड़ते हुए आई और अपने हाथ ऊपर करके वाहे स्तब्ध हो गई, सोचा कि ये क्या है कस्तूरी का सुगंध। तो भगवान जन्म ग्रहण करते हैं तो उनका साधारण जन्म नहीं है। अभी हमारा कोई बच्चा जन्म ग्रहण करता है कोई सुगंध आता है क्या, हाँ दुर्गंध ही आती है। तो यहाँ कस्तूरी के सुगंध का एक तूफान बाहर जा रहा था और इन गोपिकों ने जब दूर से देखा तो कक्ष में अंधकार था क्योंकि दीप तो लगाए हुए थे लेकिन दीप बहुत धीरे हो गए थे। लेकिन जैसे कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण के देह से या कृष्ण के जो शरीर है एक प्रकार की चमक निकल रहे थे और भगवान ने अपने हथेलियां खोली नहीं थी। जैसे छोटा सा बच्चा हथेलियां खोलता नहीं, ऐसे पकड़ के रहता, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपनी उंगलियां खोली। ऐसे कुछ उंगलियां कहां खोली, कहां उन उंगलियों का इशारा किया, जो जो दीप जल रहे थे उनकी ओर इशारा किया। अब वो दीप बेचारे शर्मा गए थे, दीपो ने लगा ये महादीप यहाँ जल रहा है, हमारा क्या अस्तित्व। तो लेकिन भगवान चाहते थे, अरे मैं ब्रज का हीरो हूँ, मैं कौन हूँ, कौन हूँ, ब्रज का हीरो हूँ, भागवतम का हीरो हूँ। तो जैसे तो कुछ स्पॉटलाइट्स मेरे ऊपर पड़नी चाहिए ना, कुछ हैलोजन्स आने चाहिए, मैं कोई मुझे देखे, लोग दौड़ते हुए आ रहे मेरा दर्शन करने के लिए, इस अंधकार में कैसे देखेंगे। तो इसलिए वो दीपों की ओर अपनी ऐसी उंगलियां करते हुए उनको कह रहे थे कि जल उठो हाँ, ताकि सब लोग मुझे देख पाए। तो जैसे ये इशारा समझते हैं तो वहां देव भी भगवत सेवा के लिए इतने आनंदित हो जाते हैं, कभी वो इतने प्रज्वलित नहीं हुए होंगे। आज पूरा अपना जोर लगाकर सारे दीप जलने लगे और जैसे ये दीप जल उठे तो सारे गोपिकाएं हैं वो भाव विभोर हो गई, वो उठी और वो अंदर आ जाती हैं, कमरे में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जैसे कि आप देखो विदेशों में किसी कमरे में प्रवेश करोगे तो सेंसर होता है, अचानक सारी लाइटें अपने आप जल जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ इस कक्ष में हुआ, जैसे गोपिकाएं आए तो सब जगह प्रकाश फैलने लगा और कृष्ण का जो देह है, कृष्ण का विग्रह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तमाल वृक्ष का पत्ता अभी अभी उग गया हो। किसने किसने देखा है तमाल वृक्ष, सबने देखा है, वृंदावन टेंपल में कृष्ण बलराम के सामने है। हाँ, तो ये जो जन्म का डिस्क्रिप्शन समझना है तो उस व्यक्ति को कस्तूरी पता होनी चाहिए, तमाल वृक्ष पता होना चाहिए, सरोवर पता होना चाहिए, नील कमल पता होना चाहिए, नील मणि पता होना चाहिए। तो ये अमेजिंग वर्णन और अमेजिंग सौंदर्य का वर्णन कृष्ण का किया है उनके प्राकट्य का कवि कर्ण पूर्णे। तो वो कहते कि ऐसे लग रहे थे कृष्णा, कृष्ण कितने मुलायम है ये देखना है, तो तमाल वृक्ष का अभी अभी उगा हुआ पत्ते को जाके स्पर्श करो। तो जब सबको इनको लगा कि ये तो तमाल वृक्ष का पत्ता अभी अभी प्रकट हो रहा है, लेकिन अभी किसी ने स्पर्श नहीं किया था कृष्ण को, दूर से देखा था, क्योंकि आंखों में भी एक योग्यता है, कौन सी चीज दूर से हम पता चलती है, कौन सी चीज सॉफ्ट है और कौन सी चीज हार्ड है, आंखों में वो एक प्रकार की योग्यता है। कि गोपियों ने ये देख लिया और उस समय यशोदा माता जग गई और उसने देखा कि उनके जो आराध्य है, उनके जो काना है तो वो उनके पास लेटी हुई है और वो भगवान के मुख मंडल को देखते रहे और वो मुख मंडल को देखकर जोर से चिल्लाने लगे। और किसी को समझ में नहीं आया कृष्ण को देखकर ये क्यों चिल्ला रहे हैं, वो चिल्लाने लगे कि हे पिशाचिनी, हे डायन, दूर हो जाओ। अभी ये गोपियों ने सोचा क्या हो गया, यशोदा तो अभी बहुत ठीक थी, जैसे कुछ डिवोटी थे ना कल प्रभु जी बहुत अच्छे थे, आज क्या हो गया अचानक। तो वैसे ही इन गोपियों ने सोचा यशोदा माता तो ठीक थी, अचानक क्यों चिल्ला रही है। बल्कि यशोदा माता ने जब अपना करवट बदले और कृष्ण के मुखमंडल को देखा, जहां कृष्ण के जो दो गाल हैं वो शीशे के समान चमक रहे थे, किसके समान चमक रहे थे, और शीशे में से आईना है और यशोदा माता ने उसमें उस गाल जो आईने के समान शीशे के समान प्रतीत हो रहे थे उसमें अपना प्रतिबिंब देखा और अपने आप को देखकर वो सो कहने लगे दूर हट, हाँ दूर हट जाओ। अब उनको लगा मेरे बालक के पास ये कौन आ गई है पिशाचिनी डायन, तो सोच समझ सकते हैं संसार में कृष्ण ऐसे सौंदर्य का बखान कहाँ आपको सुनने को मिलेगा, कहाँ हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसी सुंदरता का वर्णन हमारे आचार्य कृष्ण के लिए करते हैं, सोचो आपके जीवन में भी कोई दो गाल आ जाए और जिस गाल में आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बताओ क्या करोगे? आप थोड़ी कहोगे दूर हट जाओ दूर हट जाओ, नहीं, आप कहोगे मेरी कंघी कहाँ है, मैं अपने सौंदर्य को देखता हूँ। हाँ, तो ये हमारी दुर्दशा है। तो यहाँ हाँ जो यशोदा माता है वो कृष्ण के सौंदर्य को देखती है और कृष्ण का गुणगान करती है और फिर महसूस करती है, वो देखती है, वो समझ लेती है कि ये तो, उनको पहले लगा कि मेरा बालक कहाँ है। उनको वो गोपियों को कहती है मक्खन किसने रखा, गोपियां कहती मक्खन ना सफेद होता है ये तो नीला है। वो कहते कि नील कस्तूरी का जो जूस है वो मक्खन में मिल गया है, इसलिए मक्खन कैसे हो गया है नीला हो गया है। ये सारे दृष्टांत बहुत उन्नत हैं, लेकिन बहुत हृदय को आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे माता यशोदा ने कृष्ण को सर्वप्रथम देखा। इस संसार में वर्णन आता है कि सर्वप्रथम कृष्ण को किसी ने देखा यहाँ तो वो माता यशोदा थी। कौन थी? हाँ, किसी और ने नहीं देखा। भगवान ने अपने आप को सबसे पहले किसके लिए प्रस्तुत किया? वो थी माता यशोदा। और माता यशोदा देखती है अपने बाल कृष्ण को, उनका स्पर्श करने का सोचती तो डर जाती है। वो सोचती है तो पिघला हुआ फ्रेश नया मक्खन है, मेरी उंगली अंदर ना चले जाए। वो स्पर्श नहीं कर पा रही थी। बल्कि कवि कर्णपुर कहते कि मैं तो इतना वर्णन करूंगा कि ग्रंथ इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर उसको कोई पढ़ेगा नहीं। जैसे कुछ बुक्स बहुत बल्कि होती है तो आप उसको देखते ही डर जाते हैं। हाँ, तो वो कहते इस कारण से मैं कृष्ण के जन्म का बहुत विशद वर्णन नहीं कर रहा हूं। तो लेकिन ऐसे कवि कर्णपुर कृष्ण के आज के प्राकट्य का वर्णन बहुत विस्तार से करते हैं। हमारे पास समय नहीं है तो जस्ट मैं कंक्लूड करता हूँ। तो फिर माता यशोदा बाल कृष्ण को देखती हैं और सर्वप्रथम उन्हें स्तनपान करती हैं। और फिर ये गोपी जाती हैं, हाँ, जो नंद महाराज को बताती हैं कि आपके घर में आनंद ने जन्म लिया है। तो नंद महाराज दौड़ते हुए आते हैं, उस कक्ष में प्रवेश करते ही स्तब्ध हो जाते हैं। केवल एक ही चीज नंद महाराज की हिल रही थी और वो क्या थी? आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और इतना अधिक आनंद हो रहा था उनको कृष्ण को देखकर। तो ऐसे नंद महाराज और यशोदा माता आज के दिन सर्वाधिक आनंदित थे और भगवान का जो मूल प्रयोजन है ये जगत में अवतरित होने का वो केवल नंद महाराज और यशोदा को आनंद प्रदान करना था। फिर गोपियां क्या करती है? सारी गोपियां अपने अपने घरों में दौड़ती हैं। जितना भी घरों में व्यंजन थे, दूध था, दही, मक्खन, सबको ले आती हैं। उस कक्ष के बाहर हजारों चीजें लगाती हैं और ऐसा वर्णन आता है कि कृष्ण उन सारे ऑफरिंग्स को ग्रहण करते हैं। वो ऑफरिंग्स का समंदर था वहां। क्या था? समंदर। हम एक छोटा सा पॉन्ड भी ऑफरिंग का नहीं बना पाते। तो इतना सारा समंदर अभी अभी जन्म लिया था कृष्ण ने, सबको ग्रहण करते हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो आज के दिन गोकुल महावन में अचानक जो वृंदावन का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बढ़ गई थी। वर्णन आता है शास्त्रों में कि आज के दिन सारे जो देवी देवता सोचते हैं कि कब हम चले वृंदावन, कृष्ण का प्राकट्य हो गया है। तो सारे देवी देवता अपने फैमिली के साथ वृंदावन में अपने अपने वाहन लेके पहुंच जाते हैं। इतना ट्रैफिक जाम होता है कि पार्किंग के लिए कोई स्पेस नहीं था, जाने के लिए स्पेस नहीं था। उन्होंने सोचा तो कई सारे देवी देवता गाय बनते हैं, बछड़े बनते हैं, घास बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, फूल बनते हैं, हाँ, कई प्रकार के रूप धारण करते हैं और ब्रज में निवास करते हैं कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। इस प्रकार से ये वर्णन बहुत विस्तारमय है, लेकिन हम यहाँ विराम देते हैं। तो आज के दिन कृष्ण का प्राकट्य हुआ था और कृष्ण का प्राकट्य हमारे हृदय में भी कैसे हो, इसके लिए भी हमें चिंतित होना चाहिए। हाँ, कि कृष्ण आज के दिन प्रकट होंगे और चले भी जाएंगे, जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड सोते रहे हैं, प्रकट भी हो गए पथुरज गोकुल चले भी गए और बेचारे सोते रह गए। तो हमारा भी ऐसा ना हो कि कृष्ण का जन्माष्टमी प्रकट हो गए, पूरा साल निकल गया, कृष्ण चले भी गए और हमारा जो हृदय है वो खाली बंजर भूमि की तरह हम बन गया। तो बल्कि हमें आज के दिन कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद से भी, कि कृष्णा के प्रति जो थोड़ी सी आसक्ति है या अनुराग है वो मेरे हृदय में भी जागृत हो जाए, उनके नाम रूप गुण और लीलाओं के प्रति। तभी हमारा वास्तव में कृष्ण भावना में आने का जो लाभ है हम पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।